देवियों सज्जनों आप सबको नमस्ते। ईशावास्योपनिषद या जिसे ईशोपनिषद कहते हैं और ये यजुर्वेद का जो लास्ट चैप्टर है 40th चैप्टर है 40वां अध्याय, यही आगे जाकर ईशोपनिषद के रूप में थोड़ा बहुत चेंज होकर के हुआ है। हम उसी ईशोपनिषद के पहले मंत्र की चर्चा कर रहे थे। मेरे साथ एक बार मिलकर बोलिए, आप खुल भी जाएंगे। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम्। तो इसकी पहली लाइन का ये सिंपल ट्रांसलेशन था कि ये जो कुछ भी संसार में जो कि ट्रांजिएंट है, हमेशा मूवमेंट में रहता है ये पूरा संसार, और इस संसार का हर वो वस्तु जो अपने मूवमेंट में रहता है वो सब कुछ ईश्वर का है और सब कुछ में ईश्वर समाया हुआ है। दो चीजें, सब कुछ ईश्वर का है और सब कुछ में ईश्वर समाया हुआ है। पिछले बार हमने इसकी चर्चा की और हमने ये भी सुना श्वेताश्वेत उपनिषद का कि जैसे तिल या सीसम की सीड या मस्टर्ड सीड या पीनट सीड में तेल रहता है पर तोड़ने पर नहीं दिखता, तेल चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालना पड़ता है। जिस तरह पत्थर में या लकड़ी में आग होता है पर वैसे किसी को दिखाना हो लकड़ी तोड़ो तो आग नहीं दिखता या पत्थर तोड़ने पर नहीं दिखता, एक प्रॉपर प्रोसेस से उसको घिसने पर आग निकलता है। जैसे धरती के नीचे पानी का पानी की धारा है पर वैसे नहीं दिखता, जब तक आप खोदेंगे नहीं तब तक पानी आपको नहीं मिलता। इसी तरह इस संसार के कण कण में और हमारे अंदर भी वो परमात्मा ईश्वर रहता है पर दिखता या मिलता क्यों नहीं है, क्योंकि आपको उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर से जाना पड़ता है तभी मिलेगा। जो लोग पूछते हैं कि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं, जाना क्यों नहीं जानता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं जो होने पर भी ऐसे नहीं दिखता, यू हैव टू गो थ्रू ए प्रॉपर प्रोसीजर। जैसे तिल में तेल निकालना हो, दूध में से घी निकालना हो, लकड़ी में से आग निकालनी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने इन चीजों के बारे में चर्चा की, ये सब कुछ ईश्वर का है ये भी हमने चर्चा की। इस संसार में जो कुछ भी है सब उसका है, इवन जो कुछ मेरे पास है आपके पास है वो भी उसका है। पर क्या करें, मन नहीं मानता क्योंकि लगता है कि हमारी मेहनत है, हमारी बुद्धि है, हमारी समझ है, तो ये सब हमारी है। ये इल्यूशन के कारण हमें नहीं लगता कि ईश्वर का कुछ हो सकता है। एक हमने अभी थोड़ी दिन पहले कहानी सुनी, स्टोरी पढ़ी, जब ये क्लोनिंग हुआ, जब सबसे पहले वो डॉली नाम के जो शीप जो भेड़ बनाया गया क्लोनिंग से, तो बड़े सारे पढ़े लिखे लोग और साइंस के फील्ड में काम करने वाले लोगों ने कहा कि ईश्वर की अब जरूरत क्या है, हम तो खुद पैदा कर देते हैं, अब वो नेचुरल प्रोसीजर की भी जरूरत नहीं है, देखिए पेड़ों की तरह हम भी क्लोनिंग करके बच्चे पैदा कर सकते हैं, अब ईश्वर की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ईश्वर से बात की, देखिए आप बूढ़े हो गए हो, बहुत सारा काम आपने कर दिया, जितना बनाना था बहुत कुछ बना लिया, अब तो हम ह्यूमन बीइंग आपके स्थान ले लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है, अब रिटायरमेंट ले लो, ओल्ड एज होम में जाओ, सारी सुविधाएं दे देंगे, अब हम बड़े पावरफुल हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, विल हैंडल एवरीथिंग जो बचा हुआ है। ईश्वर ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, पर अगर आपको इतना भरोसा है तो एक बार कम्पीट कर देते हैं, मुझे थोड़ा यकीन हो जाए कि सचमुच आप मेरे जगह ले लेंगे, मेरी जरूरत नहीं है। बोले ठीक है, क्या करना है कि दो हमें टॉयज बनानी है, एक टॉय मैं बनाऊंगा, एक टॉयज आप बनाइए, मिट्टी का टॉय बनाएंगे, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ, मिट्टी का बनाएंगे, लोहे के भी बना सकते थे, लकड़ी का भी, पर होता है ना दोनों अपोनेंट मिलते हैं तो कोई ना कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, तो चलो भाई मिट्टी का दो टॉयज बनाएंगे, तो बनाना शुरू करिए। इंसानों को बोला, साइंटिस्टों को, आप एक टॉय बनाओ अपने मिट्टी से, तो उन्होंने मिट्टी उठाई, मिट्टी उठा के बनाने लगे तो ईश्वर ने कहा रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो जी? मिट्टी ले रहे, मिट्टी से टॉय बनाएंगे? मिट्टी तो मेरी बनाई हुई है ना, तुम अपनी मिट्टी लाओ, अपनी मिट्टी से अपना टॉय बनाओ। स्टोरी इतनी सी है। हम कितने भी दुनिया में कितने भी क्रांति ले आए, पर वो क्रांति भी उन्हीं के द्वारा हो सकता है जो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए चीजें हैं। ये माइंड्स भी उसी के हैं, ये अर्थ भी उसी की है, ये मिट्टी भी उसी की, ये हवा भी उसी की, ये पानी भी उसी की है, ये स्पेस भी उसी का है। उन्हीं में से हम कुछ बना सकते हैं, पर है तो वो चीजें उसी की। ये शरीर भी उसी की है, मन भी उसी का बनाया हुआ, ये इंटेलेक्ट भी उसी का बनाया हुआ, ये ब्रेन भी उसी का बनाया हुआ है। इन्हीं को यूज करके हम कुछ बना सकते हैं। इसीलिए मूल रूप से तो सब ईश्वर का है। हमारे पास ईश्वर का बनाया हुआ जो चीजें हैं, हम इसको थोड़ा आगे पीछे करके कुछ नई चीजें बना सकते हैं। इसीलिए ईश्वर का सब कुछ है और ईश्वर सब जगह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर प्रॉब्लम है कि जैसे पिछले बार भी हम चर्चा कर रहे थे, हम इंसान जिस भगवान को पूछता है वो हमारे द्वारा, इंसान के द्वारा बनाया हुआ भगवान होता है। वो भगवान नहीं जिसने हमें बनाया या संसार को बनाया। वो चर्च का भगवान हो या हमारे मंदिर के भगवान हो या मस्जिद का अल्लाह हो, वो इंसान के द्वारा बनाया हुआ, हमारे द्वारा बनाया हुआ, हमारे लिए काम करने वाला ईश्वर होता है। इसीलिए झगड़ा इसी में है। झगड़ा ईश्वर के लिए नहीं है। जो मैंने ईश्वर को जिस रूप में जाना, समझा, माना, बनाया, उसी को सब मानेंगे तभी सब सही है, नहीं तो गलत है। और क्योंकि जिस भगवान को हम पूछते हैं वो इंसान के द्वारा बनाया हुआ है, तो हमने भी उसके लिए इंसान की जो भी नेचर है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, हमने भी भगवान के लिए वही वही सब रिक्वायरमेंट कल्पनाएं की हैं। उनके लिए भी हमने घर बनाया, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की, हमने सब कुछ उसके लिए कहा। हर रिलीजन में ईश्वर का एक घर होता है। किसी का सातवें आसमान पर है तो किसी के चौथे आसमान पर है, किसी का कैलाश पर्वत पर है तो किसी के दूध के सागर में है। और आजकल तो क्योंकि ये ह्यूमन गॉड्स भी बहुत आ गए हैं, जो इंसान अपने आप को भगवान के रूप में घोषित कर चुके हैं। कोई हमारे भारत में शिरडी में भी भगवान का घर है, कहीं पुट्टपर्ति में है, और कहां कहां सब भगवान के घर बन चुके हैं। खाली इतना नहीं, खाने पीने की व्यवस्था भी हम करते हैं, उनको लड्डू खिलाते हैं, केला खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, सोने की जगह बनाते हैं। बिल्कुल जैसा मैं करता हूं, मैं भी अपने द्वारा बनाए हुए भगवान के लिए वो सब कल्पनाएं करके वही सब करता रहता हूं। ये कहानी हमने सुनी थी ब्राह्मण ग्रंथों में, वेद का जो दूसरे व्याख्या ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों में एक सुंदर कहानी आती है। कहानी समझाने के लिए होती है, सच नहीं होती है हमेशा। कहानी है कि ईश्वर ने सारा संसार को बनाया और आखिर में मनुष्य को बनाया, इंसान को, ह्यूमन बींग को बनाया। बनाने के बाद वो उन्हीं के बीच में रहने लगा, क्योंकि वो उसका सबसे बेस्ट क्रिएशन था ह्यूमन बींग, तो उनके साथ रहने लगा। तो रहने लगा तो जहां भी अपना रहे, लोग सुबह वॉकिंग में, शाम को गोल्फ खेलने में मिल जाते थे तो भगवान को बोलते थे जो मिल जाता था, ये आपने ये जो पानी को ऐसे बनाया, ऐसे ना बना के ऐसे बनाने से थोड़ा ज्यादा बेटर नहीं होता? ये जो आपने प्लैनेट्स को ऐसे बनाया, अगर ऐसे ना बना के थोड़ा ऐसे बनाते तो और बेटर नहीं होता? मतलब सजेशन है। आंखें आपने दी, बड़ा अच्छा है, पर अगर दो आंखें इधर दे देते थोड़ा और बेटर नहीं होता? जैसे कि डे टू डे लाइफ में हम ज्यादातर लोग काम नहीं करते, और जो थोड़े बहुत लोग काम करते हैं उनको हम सजेशन देते रहते हैं, है ना? नहीं, और खुद नहीं करते, तो अब भगवान को सब सजेशन देने लगे तो परेशान हो गया बेचारा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, बड़ा बहुत गलत कर दिया है, कुछ गलत किया। रोज रोज लोग टोकते, ये गलत किया, ये गलत किया, ऐसा नहीं करके ऐसा करते। तो उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुलाई, अपने जो भी उनके कोर्ट्समैन है, जो उनके मंत्रीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन सबकी एक मीटिंग बुलाई। बोला, मुझे आप लोगों से एक सलाह चाहिए, सजेशन चाहिए, कोई मेरे लिए बढ़िया सा घर ढूंढो जहां मैं रहूं पर मुझे टोकने टाकने वाला कोई ना हो, बड़ी कॉम्प्लेक्स में आ जाता हूं। तो अलग अलग मिनिस्टरों ने अलग अलग सजेशन दिया, किसी ने बोला सातवें आसमान पर चले जाओ, बोले ये इंसान का पता नहीं है, स्पेस शटल से वहां भी पहुंच जाएंगे, और पहुंच भी गए हम। बोले कोई चांद पर पहुंच जाओ, उन्होंने बोला समुन्द्र में रहो, तो समुन्द्र में भी लोग पहुंच गए नेविगेशन करके। हिमालय में बहुत सालों तक ईश्वर की व्यवस्था की गई, अब तो कैलाश रोज लाखों लोग पहुंच जाते हैं। तब जहां भी जाए भगवान की घर बनाए तो वहां लोग पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद पहले सजेशन देते थे, अब तो प्लास्टिक का कचरा भी फेंक कर आ जाते हैं, घर और गंदा करके आ जाते हैं। तो भगवान दुखी हो गए, ये सजेशन काम नहीं आता है, कोई बढ़िया सजेशन जो जो फुल प्रूफ हो, ह्यूमन बींग पहुंच ना पाए, कोई इंसान ना पहुंच पाए मेरे तक। देखिए बुजुर्ग बड़ा एक्सपीरियंस मैच्योर्ड मिनिस्टर था, तो उसने सलाह दी ऐसा करिए, आप उनके अंदर घुस रहने लगिए। ईश्वर को ज्यादा समझ में आ गया, बोले ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। कहते तब से प्रभु सभी के अंदर रहने लगे। प्रॉब्लम है कि इंसान को बाहरी दुनिया तो सब दिखता है, अपना अंदर कुछ नहीं दिखता है। तब से इंसान ईश्वर को ढूंढता है, अलग अलग रीजन से ढूंढता है, पर कभी नहीं मिलता, क्योंकि वो जहां ढूंढता है वो वहां नहीं मिल सकता, और जहां वो है वो उसके खुद के अंदर है, और कभी वो झांकने की कोशिश नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये हिरण है, इसको कस्तूरी मृग कहते हैं, मस्क डियर कहते हैं, हिमालयन क्षेत्रों में ये मिलता है। और इसकी खूबसूरती है कि इसकी नाभि में जो बेली बटन में एक तरह की स्मेल आता है, और वो स्मेल इतना बढ़िया और इतने अट्रैक्टिव है कि किसी को भी वो मोहित कर सकता है, लोग उसके तरह आकर्षित होते हैं। और खुद ये जो कस्तूरी हिरण है ये खुद भी स्मेल को सूंघता है तो ढूंढने की कोशिश करता है ये स्मेल कहां से आता है। पूरी जिंदगी वो जंगलों में पहाड़ों में भटकता रहता है, दौड़ता रहता है ये पता करने के लिए कि ये स्मेल कहां से आता है। पर पूरी लाइफ इस कस्तूरी हिरण को पता नहीं चलता ये कहां से आता है, क्योंकि वो अपने नाभि से ही आता है। हम इंसानों की वही दशा है, हम भगवान को ढूंढते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, तीर्थों में, इलाहाबाद में, गया में, बनारस में, इधर उधर ढूंढते रहते हैं, अलग अलग जगह में, आश्रमों में ढूंढते रहते हैं। पर प्रॉब्लम है कि प्रभु तुम्हारे अंदर है, और हमारे सारे शास्त्र कहते हैं अगर तुम्हें कभी ईश्वर को पाना हो वो सब जगह है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर शुरुआत तो तुम्हें तुम्हारे अंदर से करनी पड़ेगी। जिस दिन तुम्हें खुद को जाना, खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे, खुद को जानने लगोगे, खुद के अंदर रहने वाले इस प्रभु को जानोगे, फिर तो तुम कण कण में भी आपको ईश्वर दिखने लगेगा। उस मंदिर में जहां तुम 70 साल से जा रहे थे कुछ नहीं फील हो रहा था, वहां भी फील होने लगेगा। जिस बाथरूम में तुम सोच भी नहीं सकते कि यहां भगवान हो सकता है, वहां भी तुम्हें भगवान दिखने लगेगा। उस बाजार में जब कभी सोच नहीं सकते कि यहां भी भगवान होगा, वहां भी तुम्हें भगवान दिखने लगेगा। उस मगरमच्छ में भी दिखने लगेगा, सांप में भी दिखने लगेगा, उस अच्छे और बुरे में सब जगह दिखने लगेगा। पर ये तब दिखेगा जिस दिन तुम अपने अंदर देखने लगोगे। पर हमारी आदत है, हमें अंदर जाने की सेंस है ही नहीं है, इसीलिए हम दुनिया भर में देखते हैं और अपनी इमेजिनरी व्यू से भी हम ईश्वर को देखने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को एक खास तरह के बीमारी होती है, ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, इसको पैरेडोलिया कहते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या होता है, आपको किसी खास तरह के ऑब्जेक्ट में या बनावट में, चित्र में, आप जिस चीज को देखने चाहते हो वो आपको दिखने लगता है। जैसे कि डे टू डे लाइफ में आजकल आकाश अगर बिल्कुल साफ है, आजकल तो थोड़ा बारिश का मौसम है, काले बादल ज्यादा होते हैं, कभी आप देखेंगे खुले आसमान में जो काले बादल ना हो सफेद बादल मंडराते रहते हैं, तो उसमें कोई ना कोई फॉर्म बनता रहता है। पर आप उस फॉर्मेट को किस रूप में देखते हैं ये डिपेंड करता है कि आप किस रूप में देखना चाहते हैं। आप गणेश देखना चाहेंगे तो आपको बादलों में गणेश दिखेगा, फिर आप चिल्लाओगे देखो गणेश जी प्रकट हो गए। आपको जीसस देखना है तो जीसस भी दिखने लगेगा। छोटे बच्चों को ना जीसस से मतलब है ना गणेश से मतलब है, उनको हाथी से मतलब है, कुत्ते से मतलब है, वो घोड़े से मतलब है, तो उनको घोड़ा दिखता है, हाथी दिखता है, कुत्ता दिखता है, बिल्ली दिखता है, खरगोश दिखता है। उनके माँ बाप को गणेश दिखता है, जीसस दिखता है, अल्लाह दिखता है, चांद दिखता है, वगैरह वगैरह दिखता है। क्योंकि ये अलग अलग क्यों दिखता है? क्योंकि हम वही देखना चाहते हैं। ये एक बीमारी है, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अलग अलग जगह पर आपको दिखता है, किसी पहाड़ में एक नेचुरल वे में खोद कैसे बन गया वो हाथी की तरह दिखता है, आपको हाथी की तरह दिखता होगा। जो गणेश के भक्त हैं इनके इसमें गणेश दिखने लगेंगे। किसी टॉर्टिला में किसी को जीसस दिख जाता है, जल जाता है ना रोटी, और रोटी जलने में कोई ना कोई एक आकार बन जाता है। वो अलग बात है कि आप उसमें क्या ढूंढते हो। कोई हिंदू होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसमें अरविंद की छवि दिखेगा। या अगर आप कोई क्रिश्चियनिटी को मानता होगा, नहीं भी मानता होगा, ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा, उसमें उसको जीसस दिखेगा। ये एक ब्रेड है जल गया, उसमें ओबामा के भक्तों को ओबामा दिखने लगा था। मगर हो सकता है इसमें किसी को मोदी भी दिखने लगे जो मोदी भक्त है। मतलब डिपेंड करता है कि आप क्या इसमें ढूंढना चाहते हो। अब आजकल भारत में भगवानों की जगह इंसानों ने ले लिया है। अब सबसे ज्यादा पॉपुलर इंसान भगवान है ये शिरडी के साई बाबा। अब देखिए कहीं चांद में ये इंसान की छवि उसने दिखने लगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये एक बीमारी है। बीमारी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। कभी आपने देखा है आपका कोई अपना प्रिय बच्चा है, लड़का है, लड़की है, पति है, पत्नी है, जिससे भी आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो थोड़ी दिन के लिए पहली बार बाहर जाता है, बाहर जाता है, जो आपको आदत नहीं है उससे अलग रहने की, या उसका डेथ हो जाता है, या वो बाहर जाता है, मतलब आपसे दूर हो जाता है लंबे समय के लिए, और आप बहुत ज्यादा उससे अफेक्ट, आपका प्यार उसके साथ था, आप उसके बिना रहने की आदत नहीं है। क्या होता है? आपको दिन में भी रात को भी हर जगह वो दिखने लगता है। आप बाजार में भी जाते हैं, पीछे से किसी को देखते हैं बाल, आपको लगता है अच्छा ये आपका बेटा है या वही है। जब बहुत ज्यादा आपके अंदर उसके उसको जानने की देखने की तमन्ना जगे, इच्छा जगे, तो आपको दुनिया में बहुत सारे जगह वही दिखने लगता है। ये तब तक रहता है जब तक आपके मन में उसको देखने की, उसके प्रति आपका अटैचमेंट बना रहता है। जैसे जैसे वो अटैचमेंट कम होने लगता है, फिर वो दिन में रात में इधर उधर देखना बंद हो जाएगा। पर हम ईश्वरों को, भगवान को इसी रूप में ज्यादातर लोग देखने की कोशिश करते हैं। मानसिक बीमारी को हम भक्ति का नाम देने लग जाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है? ये एक छोटी कहानी है। एक बार एक भिखारी, भीख मांगने वाला भिखारी, वो भीख मांगता था, और भीख कहीं उसको एक तांबे का, एक कॉपर पॉट, एक तांबे का बर्तन लोटा मिला था। उसके पास और कुछ नहीं था, वो कॉपर का वो लोटा था, तो उस लोटे के लेकर जाता था, भीख मांगता था, जो भी मिलता था उस जो भी लेकर आता था उसे कुछ खाता पीता था, जो बच जाता था पैसे, उस पैसे को उस कॉपर के जो बर्तन में, जो तांबे के पात्र में रख देता था, बचा के रखता था, सेविंग करता था, जैसे आप बैंक में रखते हैं। तो भिखारी है, उसके पास इतना पैसा नहीं, वो उस लोटे में घर में रख देता था। ऐसे कुछ सालों के बाद उसका वो तांबे का बर्तन एक दिन भर गया, काफी पैसे हो गए। तो उसने सोचा मेरा तो कोई है नहीं, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, कोई तो है नहीं, अकेला हूं, भीख मांग के गुजारा करता हूं, तो क्या करूं पैसे का। बहुत तरह की सोचा पैसे का कैसे यूज करूं। आखिर में उसने डिसीजन लिया कि मैं काशी जाऊंगा, बनारस वाराणसी, और काशी में गंगा में नहाऊंगा। पूरे सभी भारतवासी हिंदुओं का ये रहता है कि भाई कभी हम हरिद्वार या काशी जाएं, गंगा में नहाएं, जीवन में एक बार तो जरूर जाएं। विश्वनाथ का दर्शन करूंगा, वहां बड़े प्रसिद्ध विश्वनाथ शिव मंदिर है, और तीर्थ यात्रा जिसको कहते हैं, पिलग्रिमेज करूंगा, पैसे का यही यूज करूंगा। अब बाकी तो भिखारी आदमी में तो और कुछ अच्छा का पुण्य काम नहीं कर सकता। तो उसने सोचा और डिसीजन लेके ट्रेन पकड़ा और ट्रेन से वो काशी पहुंचा। काशी स्टेशन में बिल्कुल पहुंचा तो तब सुबह के 3-4 बजे, रात के 3-4 बजे हैं, मतलब अभी उषा काल है, ब्रह्म मुहूर्त है 3-4 बजे का। तो उसने सोचा कि अब क्या करूं, मेरा तो कोई घर द्वार, कोई होटल बुकिंग, धर्मशाला बुकिंग तो है नहीं, क्या करूं। तो सबसे पहले मैं गंगा ही चला जाता हूं, वहां नहाऊंगा, अच्छी तरह नहाऊंगा, तर्पण वगैरह श्राद्ध तर्पण जो भी पिता पितरों को करना है करूंगा, करने के बाद फिर जाऊंगा विश्वनाथ दर्शन करूंगा, फिर वापस जाऊंगा। तो गंगा की ओर चल पड़ा, गंगा के किनारे पहुंचा। अभी तक तो बिल्कुल 5-5:30 बजे का समय है, अभी पूरी तरह सुबह हुआ नहीं है, लोग आए नहीं है, अकेला ये पहुंचा, अंधेरी थोड़ा थोड़ा अंधेरा अभी भी है। तो उसने सोचा कि मैं नहाऊंगा तो अपने सामान जो भी तांबे का बर्तन में जो उसके पैसे थे, कपड़े वगैरह थे, तो उसने उसको किनारे रखा और नहाने के लिए गया। तो जब वो नहाने के लिए पानी के अंदर घुसा, उसके दिमाग में समझ आया अभी तो कोई आया नहीं है, अब धीरे धीरे सुबह होगा तो लोग आने लगेंगे, तो आने लगेंगे तो मेरे तांबे के बर्तन में पैसा रखा है और मैंने किनारे रखा है, कोई चोर लेकर भाग सकता है, इसको मैंने कहीं सही जगह रख दूं। तो सोच किनारे पर आया, सोचने लगा कैसे रखूं, कहां रखूं। सोचा कि एक काम करता हूं, गंगा के किनारे रेतों में गड्ढा बना के खोद के रख दूं, खोद के अगर रख भी दूं फिर वापस आऊंगा, पता कैसे चलेगा कौन सी जगह रखा, क्योंकि रेत सब भीगी हुई है और सब जगह एक जैसा दिखेगा। तो उसने उपाय सोचा, उसने गड्ढा खोदा, उसके अंदर अपने तांबे के बर्तन को रखा और उसको ढक करके उसके ऊपर रेतों से एक शिवलिंग बना दिया, है ना, शिवलिंग बना दिया। सोचा कि लोग आएंगे शिवलिंग समझ के, नमस्ते करके चले जाएंगे और मेरा पात्र सुरक्षित रहेगा, जब मैं नहा धो करके आऊंगा तो मैं अपना पात्र लेकर जाऊंगा। तो वो गया, जिंदगी में पहली बार गंगा देखने आया, बड़े आराम से नहाया धोया, तर्पण श्राद्ध जो भी उसको करना था सब करने लगा। धीरे धीरे पीछे से लोग आने लगे, एक आदमी आया, देखा कि कुछ किनारे शिवलिंग बना हुआ है, वो भी कोई तीर्थ यात्री, वो भी कोई बाहर से आया हुआ है, देखा कि किनारे एक शिवलिंग बना हुआ है रेत का और पानी में एक आदमी नहा रहा है। उसको काशी की परंपरा का कुछ जानकारी नहीं थी, तो उसको लगा शायद काशी में गंगा में नहाने के लिए एक शिवलिंग बनाना होता है रेत से, फिर नहाना पड़ता है तभी जाकर पुण्य मिलेगा। तो उसने एक छोटा सा शिवलिंग बनाया रेतों से और नहाने चला गया। दूसरा तीर्थ यात्री आया, उसने देखा दो शिवलिंग बने हुए हैं और दो आदमी नहा रहे, तो मतलब काशी में परंपरा है कि शिवलिंग बनाने के बाद गंगा नहाने से ही पुण्य मिलता है। तो उसने भी शिवलिंग बनाया, सुबह होता गया और तीर्थ यात्री आते गए, शिवलिंग बनाते गए और नहाते चले गए। घंटों 2 घंटे के बाद जब व्यक्ति नहा धोकर के पूरी आराम से तसल्ली से पूरी जीवन भर के कसर मिटाया, नहा धोकर वापस आया, अपने तांबे का बर्तन ढूंढने के लिए जहां शिवलिंग बनाया था, देखा वहां तो 50 शिवलिंग बने हुए हैं। अब मुश्किल है, मुश्किल ये है कि अगर वो शिवलिंगों को तोड़ता है अपने तांबे का बर्तन ढूंढने के लिए, तो ये जनता पिटाई करेगी कि मूर्ख है, नास्तिक है, विधर्मी है, देखो हमारे शिवलिंगों को तोड़ता है, तो मैं क्या करूं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा तांबे का बर्तन कौन से शिवलिंग में है, उपाय कुछ है नहीं, रिलीजियस चीज है, सेंटिमेंट का सवाल है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, जब सरकार ही नहीं कर सकता है तो आप क्या करोगे, अमेरिकन सरकार भी कुछ नहीं कर सकता, इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ, आप रोड के बीच में एक मंदिर बना दो, सरकार रोड को कंजस्टेड बना के उधर से ले लेगी, पर उस बदमाश के द्वारा बनाया हुआ वो फेक मंदिर को तोड़ नहीं सकता। इतने डरे हुए सरकार हैं लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट से, और वो तो बेचारा भिखारी है, मार डालेंगे, वो कुछ नहीं कर पाया। 2-4 घंटे तक सोचता रहा, कुछ नहीं सूझा, आखिर में फ्रस्ट्रेशन में एक श्लोक बोल करके चला गया। वो श्लोक था, गतानुगति को लोक न लोक परमार्थिक गंगा सैकतलिंगेन नष्टम में ताम्रभाजनम। ये जो संसार है ना, लोक है ना, ये बड़े गतानुगतिक है। गतानुगतिक भेड़ चाल में चलने वाले हैं। सामने वाला जो कर जो सबसे पहले आया वो जो कर जाए बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। कोई अपना दिमाग नहीं लगाता, कोई अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करता। ऐसा नहीं कि वो कोई काशी में आने वाले तीर्थयात्रियों की ये समस्या है, हमारी आपकी भी लाइफ में यही समस्या है। हम बस दूसरों के नकल करके डिसीजन लेते हैं, घर कैसे चलाना है, बच्चे कैसे पालना है, मंदिर कैसे जाना है, क्या कुछ करना है, विदाउट यूजिंग आवर ओन कॉमन सेंस। गतानुगतिका लोक, ये सब लोक गतन जाने वाले के पीछे जाने वाले भेड़ चाल वाले हैं। न लोक परमार्थिक, किसी को उस परमार्थ में इंटरेस्ट नहीं है। हम मंदिर इसलिए नहीं जाते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति है, दुनिया जाती है तो हम भी चल पड़ते हैं। कोई वहां जाता है, सब जाते हैं तो हम भी चल पड़ते हैं। बाजार में कोई सामान आया, क्योंकि सब लेते हैं तो क्रेज है तो हम भी ले लेते हैं। खास तरह के हेयर कट करते हैं क्योंकि फिल्म स्टार करते हैं, दूसरे लोगों ने किया तो हम भी कर डालते हैं। कपड़ों का फैशन बदल जाता है, सब करते हैं तो हम भी कर डालते हैं। कोई रीजनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, बस क्यों करते हैं, क्योंकि सब करते हैं, हमने देखते आ रहे हैं सब कर रहे हैं। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, मेरे जैसे गरीब भिखारी का गंगा सैकत लिंगेन, इस गंगा नदी में जो सैकत रेत का बना हुआ शिवलिंग, उस शिवलिंग से मेरा ये धन से भरा हुआ तांबे का बर्तन खो गया। और होगा क्या, जब हम ब्लाइंडली चीजों को फॉलो करते हैं देवियों सज्जनों, तो ना रियलिटी मिलती है ना ईश्वर मिलता है, सिर्फ हम कुछ नुकसान उठाते हैं। वो नुकसान फाइनेंशियल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। बहुत सारे माताएं व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, बिना समझे क्यों करते हैं, इसका लाभ क्या है, क्यों करते हैं, कब करना चाहिए, नहीं करना, कुछ नहीं। बीमार हैं तब भी करते हैं, परेशान हैं तब भी करते हैं, मौसम खराब है तब भी करते हैं, क्योंकि समझ नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, करते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है, कुछ नहीं, कोई अच्छा नहीं होता है, सिवाय कि आप ज्यादा बीमार पड़ते हैं, सिवाय कि आपकी माइग्रेन भी बढ़ता है, सिवाय कि आपके अंदर की बीमारियां बढ़ती है, और कुछ नहीं होता है। ना कोई स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, ना कोई अचीवमेंट होता है, कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि कोई कॉमन सेंस लगाकर हमने नहीं किया, हमने कोई सोच समझ के नहीं किया, हमने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि दूसरे करते हैं तो हम भी करते हैं। यही कारण है ईश्वर मेरे अंदर होने के बावजूद, मेरे बाहर होने के बावजूद, मेरे बेडरूम में होने के बावजूद, मैं दुनिया भर में ढूंढता रहता हूं, लाखों करोड़ों खर्च करता हूं, फिजिकली बहुत काम करता हूं, पर कुछ नहीं होता है। क्योंकि उसका कारण है कि हम बिना ईश्वर के, जो ईश्वर हमें बनाया, हम उसको ना ढूंढ के हम उस ईश्वर को ढूंढते हैं जिसको हमने बनाया, हमारे शरीर से बनाया, हमारे मन से बनाया, हम उसको ढूंढते हैं। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई अपना बनाया हुआ चीज को, अपने बेटों को खुद कोई पूजता हो, अपने घर को कोई खुद पूजता हो। होना चाहिए कि घर आपको पूजे, क्योंकि घर का बनाने वाला आप हैं। पर प्रॉब्लम है कि घर आप बनाते हैं और उसी घर को आप पूजते हैं, आप उसी भगवान को पूजते हैं जिसको आपने और आपके पूर्वजों ने बनाया, उसको नहीं जिस ईश्वर ने आपको बनाया। मंत्र का अगला हिस्सा है, तेन त्यक्ते न भुंजी था मा गृध कस्य स्वी धनम। वो जो ईश्वर ईशा सारे संसार में सब कण कण में है और सब कुछ उसका है, वही ईश्वर और सब कुछ उसका है। इसीलिए जब तुम्हें ये समझ आ जाए कि सब कुछ उसी का है और सब कुछ में वो है, तुम एंजॉय करो लाइफ को, इस दुनिया को तुम एंजॉय करो, भुंजी था भोगो, पर उसका दिया हुआ समझ कर। तेन त्यक्तेन, ये सब कुछ उसी का है, यही भाव लेकर भोगो। हमारा जो इंसानी मन है, जो ह्यूमन माइंड है, जो मनुष्य का मन है, वो इसको ऐसा समझने की इच्छा नहीं रखता। वो कहता है त्याग पूर्वक भोगो, तेन त्यक्ति न भुंजी था। तुम क्या त्याग करोगे? त्याग वो होता है ना जो तुम्हारे पास है, जो मेरे पास है। मेरे पास कुछ है, मैंने आपको दिया, तो वो त्याग होगा। मैं अगर आपके ही चीज ले जाऊं, फिर आपको कहूं कि लीजिए मैं आपको दान दे रहा हूं, मैंने त्याग कर रहा हूं, वो तो मजाक है ना। बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आना है, आपने किसी को इनवाइट किया कि आप हमारे घर में खाने पर आइए, तो खुशी खुशी बोला आऊंगा। फिर आपने पूछा आपको क्या पसंद है, तो उसने बताया कि मुझे खीर पसंद है, ये पसंद है, तो आपने बोला कि अच्छा ऐसा करिए कि वो जो आपको पसंद है वो लेक बना करके ले आइए। वो ले आया, लेकर घर में आए, आपने बैठाया उससे, वो खाना पीना जो लिया घर में लिया, उसको प्लेट में सजा के उसके सामने रखा, बोला ये हमारे तरफ से आपको हम खाना खिला रहे हैं। उसने, बड़ा जेंटलमैन था, उसने कुछ बोला नहीं, मन ही मन हंसा। हंसा इसीलिए कि मेरी चीज मुझे ही सौंप रहे अपना बता के। पर बात यही खत्म नहीं होगी देवियों सज्जनों, उसने जब थाली रखी और वो अतिथि ने, गेस्ट ने खाया, ये दो चार बार थोड़ा सा लिया, उसके बाद घर वाले ने कहा रही है तब करिए, उतना ही है, बाकी थाली वापस ले गए और मियां बीवी बच्चे मिलकर उसको खाए। अतिथि को बोला आपके लिए उतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस किया, थैंक यू वेरी मच, आगे से हमारा ध्यान रखिएगा। ये आपको कैसे लगा? अगर आपको अच्छा नहीं लगा या आपको मजाक लगा, तो हम यही तो ईश्वर के साथ करते हैं। ईश्वर के बनाए हुए चीजों को, उनमें से कुछ चीजें मंदिर लेकर जाते हैं, कहते हैं ये मेरे तरफ से तुम्हें मैंने सौंपता हूं, ये केला खाओ, ये लड्डू खाओ, ये अमुक खाओ, बर्फी खाओ। फिर क्या करते हैं? चलो दिया, उसी का बनाया हुआ चीज तुम उसको सौंप रहे हो अपना बताकर, चलो सौंप दो। नहीं, पंडित जी उसमें से थोड़ा सा निकाल के रख देते हैं, फिर पकड़ा देते हैं, वापस लेकर सारा खाना हम ही खाते हैं। कहते हैं मैंने ईश्वर को दिया, भोग चढ़ाया। तुम कुछ नहीं दे सकते हो ईश्वर को या इंसानों को दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब उसी का है। तो त्याग तुम चीजों से नहीं कर सकते हो, जो भी तुम त्यागोगे वो उसका है। तुम्हारे पास धन है, प्रॉपर्टी है, नाम है, पावर है, वो कैसे आया? उस ब्रेन से, जो उस ब्रेन को उसने दिया, उस इंटेलेक्ट से जो उसने दिया, तुमने नहीं अपने अंदर लाए, वो मेधा से जो उसने दिया, ये तुम्हारी मेधा नहीं है, तुमने नहीं बनाया अपने अंदर वो बुद्धि, वो विवेक, वो शक्ति, वो एनर्जी, वो जोश, वो उत्साह, ये तुम्हारा अपना नहीं है, ये तुमने कल्टीवेट नहीं किया, क्रिएट नहीं किया तुम्हारे अंदर, ये तो तुम्हें उसने दिया है, उसी को यूज करके तुमने बनाया, वो सब उसी का है। इसलिए हमारे शास्त्र कभी नहीं कहा कि चीजों को सौंप करके ईश्वर को खुश करो। तो फिर त्याग क्या है, जिसको आप रिनुंसिएशन कहते हैं? ये भाव कल्टीवेट करना, हे प्रभु सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा तुम्हें ही सौंपता हूं। जब आप हवन करते हैं, हवन में हर मंत्र के आखिर में आप बोलते हैं अमुकाय स्वाहा, फिर अगला लाइन क्या बोलते हैं? इदं नमः। क्या मतलब है इदं नमः? ये मेरा नहीं है, ये जो कुछ तुम्हें सौंपा जा रहा है ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा ही है। हमने अपने मेहनत से जितना पाया वो बटोरा है और उन्हीं में से तुम्हें ही सौंप रहे हैं, मेरा उसमें कुछ नहीं है। तवैव सर्वम गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। हे प्रभु ये तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारी चीजें तुम्हें ही सौंपता हूं, मैं तो सिर्फ बीच का एक मीडियम हूं। ये जो सेंस है, इस सेंस को कल्टीवेट करना ही त्याग है। इस सेंस में क्या छुपा हुआ है? मेरा चीजें नहीं है, ये जो ईगो है, ये जो एरोगेंसी है, ये मेरा है, इस भाव को त्याग देना ही त्याग है। और इसी त्याग भाव से सब कुछ ईश्वर का है, इसी भाव से भोगो। ये दुनिया तुम्हारे लिए है देवियों सज्जनों, ये तुम्हारा नहीं है, पर ये तुम्हारे लिए है, तुम ही भोगोगे, ईश्वर नहीं भोगता। माँ बाप जब बच्चों के लिए टॉयज लाते हैं तो वो बच्चों के लिए लाते हैं, वो बच्चों का नहीं है, बच्चों के लिए होता है, बच्चे ही एंजॉय करेंगे। माँ बाप टॉयज से कभी नहीं खेलते। ईश्वर को इस दुनिया से कोई लेन देन नहीं है भोगने के लिए, वो तो हमेशा तृप्त है, पूर्ण है। भोगना हमें है, हमारे लिए बनाया गया है, पर चीजें उसकी है, मालिक वही है। जिस दिन ये भाव अंदर आ जाए वही त्याग है, वही संन्यास है, वही योग है। अगला आखिर की पंक्ति है, मां गृधः कस्यस्वि धनम्। इसलिए किसी के धन पर लालच मत करो। लालच क्यों मत करो? कस्यस्वि, ये किसका धन है? जब तुमने समझ लिया कि ये तुम्हारा नहीं है, यकीन मानो तुम्हारे पड़ोसी का भी नहीं होगा। अगर तुमने ये सेंस कल्टीवेट कर दिया कि ये घर मेरा नहीं है, तो यकीन मानो ये पड़ोसी का भी नहीं है, रिश्तेदारों का भी नहीं है, ये किसी का नहीं है, सब कुछ उसी का है। जिस जमीन पर मेरा घर है, जहां मेरा नेम प्लेट लगा हुआ है, मेरे से पहले उस जमीन पर कोई दूसरा मालिक था, उसका नाम प्लेट था, उससे पहले और किसी का था। लाखों करोड़ों सालों में हजारों लाखों लोग आए, अपना नेम प्लेट लगाए, मालिकाना दावी किया, क्लेम किया, वो चले गए, जमीन वहीं पड़ी हुई है। आज मैं मालिक हूं, मेरे बाद लाखों सालों बाद लाखों लोग आएंगे, नेम प्लेट लगाते जाएंगे और चले जाएंगे, जमीन वहीं पड़ी रहेगी, उसका मालिक असली मालिक भी वहीं पड़ा रहेगा। हम आते जाएंगे, रेंट लेने वाले, किराए पे रहने वाले अपना समझ के चले जाएंगे। हमारे हर चीज पर हमारा उतना ही अधिकार है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे घर में कोई रेंट में रहता है, वो एंजॉय कर सकता है, मालिक कभी नहीं बन सकता। हम इस धरती में किसी भी चीज का मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि हम थोड़ी दिन के लिए हैं, फिर चले जाएंगे, कोई दूसरा इसको यूज करेगा। आपकी इकोनॉमी भी उसी पर टिका हुआ है। किसी भी नोट पर का मालिक आप नहीं हो सकते हो। नोट का मालिक तो सरकार होता है, गवर्नमेंट होता है। आप इस नोट को यूज करिए, वो यूज करेंगे तो नोट दूसरे के पास चला जाएगा, जब तक उसी के पास है वो कहेगा मैं इसका मालिक हूं। जैसे ही आप इसको यूज करेंगे कोई तीसरा उसका मालिक बन जाएगा। इस तरह आपकी इकोनॉमी चलती रहती है। मालिक कोई नहीं होता है उस नोट का, पर एंजॉय सब करते हैं, भोगते सब हैं। यही फीलिंग, इकोनॉमी का फीलिंग आप ईश्वर पर ले आए तो आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे। यही फीलिंग आप नोट पर ले आए, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन जाएंगे। प्रॉब्लम है कि आप उस सेंस को कहां डालते हैं। यही सेंस को आप ईश्वर के साथ जोड़ दीजिए तो आप सन्यासी बन गए, योगी बन गए। यही भाव है। संसार में किसी का कुछ भी नहीं, सब ईश्वर का है। ओवरऑल मंत्र का सार है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ जो कुछ संसार में है सब कुछ ईश्वर का है, और सब में ईश्वर समाया हुआ है। इसीलिए उसी का समझकर भोगो, उसी का दिया हुआ समझकर भोगो। किसी की चीज पर लालच मत करो, क्योंकि कोई चीज किसी की नहीं है। अपनी मेहनत करो, उस मेहनत से जो कमाओ उसको एंजॉय करो, ये सोचे बिना कि मेरा है, तो फिर आपकी लाइफ भी, हमारा जीवन भी सुंदर होगा, ज्यादा खुशी से भरा हुआ होगा, और संसार भी ज्यादा खूबसूरत होगा, और ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता भी सरल होगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, शांति।